તારીખ 14/12/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 500, 641 અને 642 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 521
આખિર કા જો બડા પેરેગ્રાફ હૈ હમારે પાસ આને મેં किसी किसी प्रकार से आपके साथी श्री देवकरण जी का मन रुकता था और यह रुकना स्वाभाविक है क्योंकि हमारे विषय में सहज ही शंका उत्पन्न हो ऐसे व्यवहार का प्रारब्धवशात हमें उदय रहता है। जो गृहस्थी का व्यवहार है, व्यापार है, कुटुंबादि का जो व्यवहार है, तो देवकरण जी साधु थे और उनकी पहचान उतनी नहीं थी, तो साधु होकर के छोटी उम्र के लड़के जैसे के पास बहुमान से बैठना आना विनय आदि करना, तो उनका जो मन रुकता था और वो होना स्वाभाविक है क्योंकि हमारा उदय भी इस प्रकार का है। और वैसे व्यवहार का उदय देखकर प्राय हमने धर्म संबंधी संघ में लौकिक एवं लोकोत्तर प्रकार से मेलजोल नहीं किया। हमको भी मालूम है कि हमारा ये जो व्यवहार और परिस्थिति है ये लोगों को शंका का कारण होगा, तो हम भी लौकिक रूप से और लोकोत्तर रूप से या धर्म के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में हम धर्म संबंधी कोई बात में अंदर में आते नहीं, परिचय बढ़ाते नहीं, परिचय करते नहीं, धर्म संबंधी परिचय नहीं करते, क्योंकि धर्म की बात करेंगे लोगों को शंका होगी। सामाजिक रूप से जैसे समाज में बैठे लोगों सामाजिक लोगों के साथ बैठे और धर्म की चर्चा छेड़े, कई लोगों को ऐसी पद्धति होती है, सगे संबंधी नात जात में बैठते हैं और खुद धर्म के क्षेत्र में रस लेते हैं तो धर्म की बात किया करते हैं। इस साइकोलॉजिकल होता है, जो वकील होता है वो कायदे की बात करेगा, कहीं भी मिल जाएंगे तो डॉक्टर होगा वो अपने केसों की बात करेगा, ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और जो धर्म के क्षेत्र में तत्वज्ञान का अभ्यास करेगा तो वो बात चालू कर देगा, हम नहीं करते, ऐसे हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो लोगों को शंका का कारण होगा कि वो बात तो धर्म की करते हैं और व्यापार में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। व्यापार में भी उल्टी सुल्टी बोलने वाले तो होते ही हैं। एक व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार का अभिप्राय होता है, किसी का किस प्रकार का, किसी का किस प्रकार का, तो हम धर्म की बात छेड़ते नहीं और धर्म के क्षेत्र में भी ज्यादा परिचय नहीं बढ़ाते। जो भी पात्र जीव आ गए थे परिचय में वो बात अलग है, बाकी धर्म के क्षेत्र में खुद परिचय बढ़ा करके कोई धर्म प्रचार करने का ऐसी कोई बात आगे आकर के हम नहीं करते, आगे बढ़ करके आगे आकर के नहीं करते, मुख्य होकर के नहीं करते, ऐसा कहते हैं। क्यों? कि हमारा उदय हमें मालूम है, लोगों को शंका का कारण होने की संभावना बहुत है, इसलिए धर्म संबंधी संघ में लौकिक एवं लोकोत्तर प्रकार से मेलजोल नहीं किया कि जिससे लोगों को हमारे इस व्यवहार के प्रसंग का विचार करने का अवसर कम आए। लोग तो ये विचार करने लग जाएंगे कि हमारा व्यवहार कैसा है, बात कैसी है और व्यवहार कैसा है, क्या कहेंगे। तो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, आचरण में तो देखो। और कोई भी साधक जीव का जो भी ध्येय होता है बहुत ऊंचा होता है, यानी पूर्णता का होता है। और आचरण तो अपूर्ण ही होता है क्योंकि साधक है। अगर आचरण पूर्ण हो गया तो साधक नहीं रहा, सिद्ध हो गया। इसलिए बात और आचरण में साधक को हमेशा हमेशा अंतर होता ही है, लेकिन सामान्य जन उस दृष्टि से नहीं देखेगा। लौकिक जन तो ऐसे देखेगा कि बात कुछ कुछ करता है, आचरण इसका कुछ और है, ये बात हमको नहीं बैठती है। और इसलिए बहुभाग लौकिक जन साधकों से अपरिचित रहते हैं और या दूर ही रहते हैं, समीप नहीं आते। यही कारण है कि लोग की बाह्य दृष्टि होने से आचरण को देखेंगे। और इसलिए जो भी लोगों को चक्कर में लेना चाहते हैं वो बाहर में त्याग का आचरण पहले कर लेते हैं, वो त्याग धारण कर लेते हैं, वेश धारण कर लेते हैं, और फिर लोग इसके चक्कर में आते हैं, भले भीतर में कुछ ऐसा नहीं हो। यही कारण है, ज्ञानी की पहचान नहीं होने का कारण यही है कि ज्ञानी सहज ही उदय अनुसार प्रवृत्ति करते हैं और उनकी बात बड़ी अच्छी होती है, ऊंची होती है। तो दोनों का जो अंतर है उसमें बाह्य दृष्टि के कारण लोग शंका करते हैं और दूर रह जाते हैं।
जो अपना अहित कर देता
है। हाँ, अनंत काल ऐसे ही गया, अनंत काल वैसे ही गया। आपसे या श्री देवकरण जी से अथवा किसी अन्य मुमुक्षु से किसी प्रकार की कुछ भी परमार्थ की बात की हो हमने, उसमें मात्र परमार्थ के सिवा कोई अन्य हेतु नहीं है। परमार्थ मैंने आपका आत्मकल्याण का हमारा हेतु रहा है। जब भी हमने कोई बात परमार्थ की हो, किसी से भी की हो, आपसे की हो या किसी से भी की हो, हमारा इसके पीछे आशय आत्मकल्याण का रहा है। इस संसार के विषम एवं भयंकर स्वरूप को देखकर हमें उससे निवृत्त होने का बोध हुआ। क्या हुआ? इस संसार के विषम एवं भयंकर स्वरूप को देखकर, बहुत विषम है संसार का स्वरूप, विपरीत है और भयंकर दुखमय है, भयंकर परिभ्रमणमय है। ऐसा संसार का स्वरूप हमने देखा और उस संसार से नाश होने का ज्ञान भी हमको प्राप्त हुआ। बोध मैंने ज्ञान की प्राप्ति हमें हुई है कि ऐसे संसार से कैसे हम छूट सकें। तो संसार से छूटने का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। जिस बोध के से जीव में शांति आकर समाधि दशा हुई और हमको शांति और आत्म शांति और आत्म समाधि भी प्राप्त हुई है, वह बोध इस जगत में किसी अनंत पुण्य के योग से जीव को प्राप्त होता है। ऐसा आत्मज्ञान किसी को प्राप्त होता है? किसी की होनार अच्छी होती है, ऐसे किसी कुछ एक जीव को ही प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। ऐसा महात्मा पुरुष पुनः पुनः कह गए हैं और वो बात महात्माओं ने बार बार कही है। इस दुष्म काल में अंधकार प्रकट होकर बोध का मार्ग आवरण प्राप्त हुए जैसा हुआ है, और वर्तमान काल में ऐसा दुष्म काल है कि अज्ञान अंधकार छा गया है और मार्ग को आवरण प्राप्त हुआ है। मोक्ष का मार्ग कोई समझते नहीं, कोई जानते नहीं है, लुप्त प्राय हो गया है मोक्ष का मार्ग, तो ऐसा हो गया है। इस काल में हमें देह योग मिला और ऐसे काल में हमको मनुष्य भाव का देह योग मिला है। यह किसी प्रकार से खेद होता है कि ऐसे दुष्म काल में क्यों इधर आना हुआ। अगर महाविद्या में देह होता तो हमारी मुक्ति हो जाती, यहाँ तो बहुत विषमता है। तथापि परमार्थ से उस खेद का भी समाधान होता रहा है, इसका भी समाधान हमको हो गया, क्योंकि वो तो हमारा कर्म के देन है कि हम इधर आ गए। गुरुदेव कहते थे भूल हमने की तो हम इधर आ गए, महाविद्य से इधर आ गए, वो तो हमारी भूल से हम आए हैं, क्या करें। हाँ मखाना मैं तो इन अर्थ के प्रारब्ध आदि ना इधर आना हुआ, वक्त ना मार्या, जेम के कोई नो वक्त खराब आ गयो तो प्रारब्ध खराब, त्यारे दरिद्र थयो ने। कोई श्रीमंत दरिद्र हो जाता है तो क्या बोलता है कि वखा के मारे इधर आ गया, वखा मैंने प्रारब्ध के आधे हमारी ये हालत हो गई। तो हमको तो ज्ञान दृष्टि से उसका भी समाधान रहता है, परंतु उस देह योग में कभी कभी किसी मुमुक्षु के प्रति कदाचित लोक मार्ग का प्रतिकार पुनः पुनः कहना होता है। तो क्या है कि इस भाव में, देह योग में, मैंने इस भाव में कभी कभी किसी मुमुक्षु को प्रति कदाचित लोक मार्ग का प्रतिकार, मैंने संप्रदाय का जो धर्म मार्ग है वो सब लोक मार्ग है, लोकोत्तर मार्ग नहीं, जो सब लोग चलते हैं इसका हम प्रतिकार भी करते हैं कि ये मार्ग ठीक नहीं है, ऐसा भी हमारे से बात निकलती है कि ये संप्रदाय बुद्धि से लोग संप्रदाय में की क्रिया में लगे हुए रहते हैं, इससे कोई आत्मकल्याण होता नहीं है, ऐसा प्रतिकार भी हम कभी कभी करते हैं किसी मुमुक्षु से बातचीत में। प्रतिकार पुनः पुनः कहना होता है, ऐसा ही एक योग आपके और श्री देवकरण जी के संबंध में सहज ही हो गया है, और आपको भी वो बात हमने कही है, ऐसा हमारे से बना है। परंतु इससे आप हमारा कथन मान्य करें ऐसे आग्रह के लिए कुछ भी कहना नहीं होता, हमारा आग्रह नहीं है, हम थोपना नहीं चाहते कोई बात, आत्मकल्याण के हेतु से कोई बात कर दी तो कह दी, हमारा कोई आग्रह है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी बात आप मान्य कर लो, आप विचार करो, अगर आपको आत्मकल्याण में हेतुभूत लगे तो मान्य करो, वरना मत मानो, हमारा कोई आग्रह नहीं है, मध्यस्थ तौर से बात किया है। केवल हितकारी जानकर इस बात का आग्रह किया रहता है या होता है, और आत्मकल्याण पर वजन है तो वो वजन तो आएगा हमारा कि यही परमार्थ है, तीन काल में ऐसा ही मार्ग है, ऐसा हो सकता है। इतना ध्यान रहे, अगर आपको इतना ध्यान रहे कि केवल आत्महितकारी दृष्टिकोण से आपका ध्यान रहे तो किसी तरह संग का फल होना संभव है, तो हमारा जो संग हुआ है इसका अच्छा फल होने का संभव है, या आपको भी कुछ न कुछ लाभ पारमार्थिक हो सकता है हमारे संग से। अगर आत्मकल्याण का दृष्टिकोण से हमारी बात का विचार करोगे तो यथासंभव जीव के अपने दोष के प्रति ध्यान करके दूसरे जीवों के प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर प्रवृत्ति करना, अपने जीव के यथासंभव जीव को अपने दोष के प्रति ध्यान करना और दूसरे जीव के प्रति निर्दोष दृष्टि रखना है, उसके दोष के प्रति ध्यान मत देना। और जैसे वैराग्य का वैराग्य उपशम का आराधन हो वैसे करना, यह प्रथम स्मरण योग्य बात है। ये बात प्रथम ख्यास प्रथम लक्ष्य में रख लेना, आत्मस्वरूप का नमस्कार प्राप्त हो। ऐसे कह करके ये पत्र को यहाँ समाप्त किया है। आगे 641 पत्र, हिंदी में 491 पाना है, 184। देखत भूली टले तो सर्व दुख का सर्व दुखनो क्षय थाय, देखत भूली टले तो सर्व दुखनो क्षय थाय। गुजराती में अवतरण चिन्ह में एक स्लोगन जैसी बात है। ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, इसका हिंदी वो है कि देखते ही भूलने की आदत दूर हो जाए तो सर्व दुख का क्षय हो जाए। ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, फिर भी उसी देखत भूली के प्रवाह में ही जीव बहा चला जाता है। ऐसे जीवों के लिए इस जगत में कोई ऐसा आधार है कि जिस आधार से या आश्रय से वे प्रवाह में न बहे? बस ये प्रश्न रख कर के पत्र को समाप्त कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं? देखत भूली टले, देखत भूली मैंने क्या है कि जो भी देखने में आता है उसमें भूल होती है और वो भूल निकल जाए तो कोई भी दुख नहीं रहे, सर्व दुख चला जाए, क्षय हो जाए। क्या बात है उसमें? कि जीव की संयोग दृष्टि है, संसार में सभी जीव की संयोग दृष्टि है, तो संयोग की प्रधानता से ही देखता है वो, इसकी भूल है, वो देखत भूल है। क्या है कि इसने इसका भला किया, इसने इसका बुरा किया, जबकि कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता। और अपने विषय में ऐसा ही लेता है कि आपने मेरा अच्छा किया, आपने मेरा बुरा किया, नुकसान किया। तो राग द्वेष का कारण क्या है? वो देखत भूल है। और कोई मेलजोल भी ऐसा ही है, जैसे किसी ने किसी का अच्छा किया, किसी ने किसी का बुरा किया हो, वो वास्तविक वस्तु स्वरूप में नहीं है, ये तो देखत भूल ही है। देखने में जो आता है वैसा है ही नहीं, लेकिन संयोगी दृष्टि से ही सारा जगत देखता है और राग द्वेष करके दुख को उत्पन्न करता है। अगर वो भूल टल गई, निकल गई, तो सर्व दुख का क्षय हो गया, वितराग हो गया। मेरा कोई भलाई नहीं करता, मेरा कोई बुरा नहीं करता, मैं किसी से राग करूं, किससे द्वेष करूं मैं? बात खत्म। मेरा कोई भला बुरा करने वाला नहीं है, तो मेरे को राग द्वेष करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है कि ये भूल निकल जाए तो सब सब दुख का क्षय हो जाएगा, ये स्पष्ट अनुभव होता है। फिर भी उसी देखत भूली के प्रभाव में ही जीव बना चला जाता है। सारा जीवों का प्रभाव, समूह के परिणाम का प्रभाव ऐसा ही होता है। सारे दिन में देखो यही प्रभाव में जीव चलता है कि नहीं चलता है, यही प्रभाव में चलता है। आपने मुझे दुख पहुंचाया, आपने मुझे सुख पहुंचाया, सब गड़बड़ है, ऐसा है ही नहीं। ऐसे जीवों के लिए सब जीव ऐसा करता है, ऐसे जीवों के लिए जगत में कोई ऐसा आधार है कोई ऐसा आधार? प्रश्न रख दिया है कि जिस आधार के आश्रय से वे प्रभा में न बहे, ज्ञानी पुरुष का आधार है, वही उसको बचा सकता है। एक सत्संग का ही आधार है, और कोई आधार नहीं है। सत्संग में ये बात छुप सकती है, सही समझ आ सकती है सत्संग के द्वारा, तो जी उस प्रभाव में बहेगा नहीं। तो उस पर से वो लेना है कि कहीं हम इस प्रभाव इस प्रकार के प्रवाह में बहते हैं या नहीं बहते हैं, वो अपने को देखना है। अपने परिणमन में, वर्तमान परिणमन में ये देखना है कि हम ऐसे प्रवाह में बह जाते हैं या नहीं बहते हैं। क्या बात है, देख लेना। अगर बहते हैं तो सत्संग का आश्रय करें, वही एक साधन है, और कोई साधन
नहीं है।
भ्रांति संयोगी दृष्टि से होने वाली भ्रांति, भ्रांति है, देखत भूल को भ्रांति, एक ही बात है। वो भ्रांति भी किस तरह से कि देखते ही ऐसा लगता है इसने इसे कुम्हार ने घड़ा किया और अग्नि से पानी गर्म हुआ, बहुत सी बातें देखने में आती है, और एक का लाभ दूसरे का नुकसान। लाभ नुकसान का सब दो प्रकार है, उसमें दूसरे कोई कारण बनाते हैं, अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा नव जो जो। वो कारण कार्य में दूसरे को कारण कार्य बनाना, उस प्रभाव में सारा जगत चलता है, वो देखत भूली है और कुछ नहीं है। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा है
नहीं।
अच्छा, हाँ, दर्शन मोह से ऐसा लगता है, जैसे कोई चीज अच्छी लगती है, देखने से ही अच्छी लगती है, वो भ्रांति कैसी है कि हमारे चेहरे पे बाल सफेद हैं और यहाँ चमड़ी सफेद है, दोनों बगल बगल में, ये सफेदाई हमको अच्छी नहीं लगती और ये अच्छी लगती है, क्या भ्रांति है? ये तो सिल्वरिश है, सफेद में भी चांदी जैसा है, उसमें तो चांदीपन जैसा नहीं है, फिर भी हमारी भ्रांति ऐसी है कि वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, ये सफेद कलर है, वही सफेद कलर, एक सफेद कलर अच्छा लगता है, बगल वाला अच्छा नहीं लगता है, दूसरा हो तब तो ठीक है भाई, कि ये तो दूसरा है वो दूसरा है, तो दूसरा वाला अच्छा लगता है, लेकिन एक ही प्रकार का होने के बावजूद भी ये जो दर्शन मोह के कारण से ऐसा होता है, देखते ही हमारे परिणाम जो है वो राग द्वेष करने लग जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है तो द्वेष होता है, अच्छा लगता है तो राग होता है, न चीज अच्छी है न चीज बुरी है, भ्रांति से गड़बड़ होती है। બરાબર, ઇન્ટરમીડિયેટ મુમુક્ષુ કી પ્રયત્ન દશા, એક અજ્ઞાની કી દશા હૈ, એક જ્ઞાની કી દશા હૈ, ભ્રાંત દશા હૈ વો અજ્ઞાની કી હૈ, નિર્ભ્રાંત દશા હૈ વો જ્ઞાની કી હૈ। અબ દોનો મેં ક્યા હોના ચાહીએ કે અજ્ઞાન મિટ કરકે જ્ઞાન હો જાય, तो इसके लिए इंटरमीडिएट है सत्संग। वो तो प्रश्न पूछा है कि और कोई आधार है क्या, वो तो आपका जो प्रश्न है वही रखा है, तो सत्संग एक आधार है जिससे मुमुक्षुता प्रकट हो, मुमुक्षुता वर्धमान हो और आगे बढ़ करके ज्ञान दशा की प्राप्ति हो जाए। हाँ, लेकिन वो पतली हो जाएगी, भ्रांति है वो पतली हो जाएगी, पतली हो करके टूटेगी, मजबूत होगी तो टूटेगी नहीं। ये गुरुदेव ने लिया है कि परमागम सार है ना, उसमें 300 नंबर का बोल है। परमागम चिंता मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में आता नहीं, यानी मुमुक्षु की भूमिका में दर्शन मोह की मंदता होती है, ज्ञान दशा में अभाव होता है। तो मंद होता है तो वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप ख्याल में यानी यथार्थ रूप से भाव भाषण में आता है। जब भाव भाषण होता है तो दर्शन मोह मंद होता है, दर्शन मोह मंद होता है तो भाव भाषण होता है, और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा अनुभव में आए नहीं ऐसा है। तो आत्मानुभव के काल में दर्शन मोह का अभाव होता है, तो ये इसका क्रम है। तो मुमुक्षु की भूमिका में वेदना से लेकर के परिभ्रमण की चिंतना से लेकर के जो भी भाव भाषण तक के जितने भी स्टेज हैं उसमें उत्तरो उत्तर दर्शन मोह की मंदता होती जाती है, ये इसका प्रोसेस है। और भाव भाषण के काल में वो अभाव यक्ष होने के परिस्थिति में आ जाता है, तो आगे जाकर के अभाव सहज हो जाता है, यही कारण बनता है, वही इसका माध्यम है, वही इंटरमीडिएट है। और इसके लिए बाह्य साधन सत्संग है, बाहर में आधार कोई हो तो सत्संग का आधार है, और तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। हाँ, सत्संग वाले नहीं, उसमें वो लेना है कि जीव ने सत्पुरुष के योग का महत्व को समझा नहीं है, प्रत्यक्ष योग का महत्व समझ में नहीं आया है। वो बीजभूत तो थोड़े क्यों कि प्रथम संकेत वहां से होता है, पहला संकेत कहाँ होता है, सत्पुरुष की पहचान से होता है, फिर दूसरा संकेत होता है स्वरूप की पहचान से होता है, फिर तीसरा संकेत होता है स्वरूप का अनुभव होने, बस ये जो बीजभूत भूल है वो बात है पहले कि सत्पुरुष की पहचान नहीं हुई। पहचान हुए तो उसका प्रत्यक्ष योग का महत्व समझ में आता है। दस मिनट और है, और कौन सा लेना?
642
नीचे। समस्त विश्व प्राय परकथा तथा परवृत्ति में बहा चला जा रहा है, उसमें रहकर स्थिरता कहाँ से प्राप्त हो? वो अच्छी तरह दिखने में आता है, अनुभव में आता है ये बात तो, कि सारा जगत है वो परकथा और परवृत्ति में ही बह रहा है। पंचायत दूसरों की पंचायत, बस पर कथा और परवृत्ति, पर पदार्थ के प्रति वृत्ति और पर कथा, तो सारा विश्व ऐसे ही चलता है, सारा जगत ऐसे चलता है। उसमें रहकर, ऐसे जगत में रह कर के आत्मस्थिरता कहाँ से आ सकती है? वो प्रभाव में तो, वो माहौल में तो आत्मस्थिरता आने का कोई अवसर नहीं दिखता है। कहते हैं कि जब अंदर में तो वृत्ति जाती नहीं, तो बाहर में दिखते हैं उसने क्या किया, उसने क्या किया, कौन कहाँ आया, कौन कहाँ गया, बस यही बात चलेगा। ऐसे बहुत आइडियल दृष्टांत है, वो आदर्श दृष्टांत है एकदम। ऐसे अमूल्य मनुष्य जन्म का एक समय भी परवृत्ति में जाने देना योग्य नहीं है। ऐसे अपने अमूल्य मनुष्य जन्म का एक समय भी परवृत्ति में जाने देना योग्य नहीं है। और कुछ भी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषतः खोजने योग्य है। और कुछ भी वैसा हुआ करता है, वैसा मैंने परवृत्ति, परवृत्ति और में जाता है समय हमारा, ऐसा हुआ करता है, तो इसका कुछ, उसका उपाय कुछ विशेषतः, मैंने विशेष उपाय, विशेष प्रकार से, विशेषतः मैंने विशेष प्रकार से उसका उपाय खोजने योग्य है। मैंने उसके लिए खास प्रयत्न करना चाहिए, कि जिसलिए खास पुरुषार्थ करना चाहिए, कि जिससे हमारा परिणाम उस तरह से प्रवृत्ति में नहीं जाए। अच्छा अब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष का निश्चय होकर, निश्चय माने पहचान, स्वरूप की पहचान को कहते हैं निश्चय। ज्ञानी पुरुष का निश्चय होकर अंतर्भेद न रहे, आपस में भेद न रहे, एक भाव हो जाए, तो आत्म प्राप्ति एकदम सुलभ है। क्या, क्यों के दर्शन में एकदम डाउन हो जाएगा? यानी पुरुष का निश्चय होकर, क्योंकि वो तो प्रथम संकित हो गया, अंतर्भेद न रहे तो आत्म प्राप्ति एकदम सुलभ है, ऐसा ज्ञानी पुकार कर कहे गए हैं। ज्ञानी भी वो बात को पुकार करके कह गए हैं, ज्ञानी अपनी बात कह गए। फिर भी लोग क्यों भूलते हैं? आश्चर्य करते हैं कि फिर भी लोग क्यों भूलते हैं। एक तो ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी के लिए कहना एक वर्तमान काल की करुणता है, ट्रेजेडी है। ऐसे जो आगे के पुराने शास्त्र देखते हैं तो बार बार उस ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि ये बात तो सहज ही समझ में आए ऐसी है। इसलिए बहुत जो पौराणिक शास्त्र है उसमें ये बात इतनी नहीं आई है, लेकिन इस काल में इसकी आवश्यकता ज्ञानियों को जब मालूम हुई तो उन्होंने सिर्फ लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस बात को कहा, करुणा से कहा, कोई अपेक्षा वृत्ति से नहीं कहा। ये बात जरूर है। हाँ, बहुत जबरदस्त बात है वो तो। वो तो वहाँ के वो तो ग्रंथों में आगमों में ठाम ठाम कहा भी है, इसलिए नहीं कहा है वो बात नहीं है, कहा भी है। और कुछ ग्रंथों में कम कहा है, कुछ में विशेषतर कहा है। जैसे समय सार में मूल गाथा में कहीं वो बात नहीं आती है, लेकिन चौथी गाथा की टीका में वो बात कहा है कि जिसने आत्मज्ञान हुआ है उसका तुमने संग नहीं कहा, किया सेवा नहीं की, इसलिए तुमको परिभ्रमण हुआ। तो वो बात 900 साल के बाद किया, 2000 साल पहले समीसार हुआ और 1100 के साल के बाद टीका हुई, तो 900 साल के बाद वो बात आई है, टीका में वो बात आई है। तो कुछ ग्रंथों में, जो ग्रंथों में नहीं है, जिस काल के ग्रंथों में, तो लगता है कि उस काल में उतनी आवश्यकता नहीं देखी होगी, ये भी हो सकता है, ये अनुमान है कि हो सकता है कि उतनी आवश्यकता नहीं देखी हो। अपन तो वर्तमान काल का विचार करें तो जो भी कहा है वो हमारे लिए अच्छा की, हमारे लिए आत्मकल्याण की जो बात की है वो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। कि अगर ये बात से भी हमारा ध्यान चला जाए तो हमारा काम हो जाए, अगर हमारा ध्यान नहीं गया तो उसका कोई उपाय नहीं है। फिर से ज्ञानी पुरुष का निश्चय होकर अंतर्भेद न रहे तो आत्म प्राप्ति एकदम सुलभ है। बहुत आसान सुगम उपाय बता दिया, और बढ़िया से बढ़िया है, सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। अपने गुजराती में कहें सस्तु भाड़ू और सिद्धपुरनी यात्रा, किराया कम लगे और सिद्धपुर तक पहुंचना होवे, ऐसी बात हो गई। और ज्ञानी ने पुकार पुकार कर ऐसा कहा, फिर भी लोग क्यों भूलते हैं? श्री डूंगर को प्रणाम। इस तरह से ये महत्वपूर्ण बात पर ध्यान खींचा है, यहाँ तक रखें।